संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। समय सार परमागम की चर्चा चल रही है, जिसमें अपन ने जीवा जीवाधिकार से मोक्ष बंधाधिकार तक की चर्चा की, जिसमें ये बताया गया कि अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़कर जितने भी पर पदार्थ हैं और पर पदार्थों के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले रागादि भाव हैं, वे सब मैं नहीं हूं, वे सब मेरे नहीं हैं, मैं उनका कर्ता भोक्ता भी नहीं हूं। यह बात जीवाजीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार में विस्तार से बताई। फिर पुण्य पाप अधिकार में ये बताया कि पाप के समान पुण्य भी ही है, क्योंकि वो बंध का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं। फिर आश्रव अधिकार में ये बताया कि भी पुण्य और पाप के भाव आश्रव भाव हैं, वे आत्मा नहीं है। वे दोनों भाव आश्रव भाव होने से बंध रूप हैं, बंध के कारण हैं, हे हैं, पर भगवान आत्मा उन आश्रव भावों से भिन्न है। जिन सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं ने उस भगवान आत्मा का अनुभव कर लिया है, उनके भोगों का संयोग रहने पर भी बंध नहीं होता। फिर संबर अधिकार में इस भेद विज्ञान का अभिनंदन किया कि भेद विज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, और आज तक जितने जीव सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं वो सब भेद विज्ञान के बल से ही हुए हैं, और आज तक जो दुनिया में भटक रहे हैं वो सब भेद विज्ञान के अभाव से ही भटक रहे हैं। संवर अधिकार के बाद में बंध अधिकार है, और बंध अधिकार में ये बताया है कि ना तो कारमान बगनाओं से जीव बंधा है, न मन वचन काय की चंचलता से जीव बंधा है, और न जीवों के मरने मराने से जीव बंधा है, न पांच इंद्रियों के भोगों से बंधा है। यदि बंधन का कारण है तो एकमात्र मिथ्यात्व सहित कसाय भाव ही है। बंध है एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। विस्तार से इस बात की चर्चा बंधाधिकार में की। अब मोक्षाधिकार आरंभ होता है कि हमें मुक्त होना है, इसीलिए तो हम सब मुमुक्षु कहलाते हैं ना, कि जिन्हें मोक्ष की इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है वे सब मुमुक्षु हैं। तो मोक्षाधिकार में मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है इसकी चर्चा की गई है। आरंभ की बहुत ही मार्मिक गाथाएं हैं, पहले दो गाथाएं अपन पढ़ें, अच्छा रहेगा। जह नाम को भी पुरुषो बंधन अम्मी चिरकाल परिबद्धो तिब्बम मंद सहावम कालम च बयान दे तस्य जहन विकुंभदि छेदम न मुच्यते तेन बंधन वसोयम कालेण बहुणेन स नरोपावधि विमोक्षम इयम कम बंधनानम पयेसेठ्य पयदि मेयमनुभागम जानंतो बण मुंचति मुच्चदिशो चैव जदि शुद्धो। सीधी बात वो कहते हैं कि बंधन को जानने से बंधन का नाश नहीं होगा। चिरकाल परिबद्धो बंधन बंधम्मि, बंधों में चिरकाल से पड़ा है ये आत्मा, कब से पड़ा है, फिर कैसा है वो, मंद बंध है कि तीव्र बंध है, और उसका बहुत डिटेल है, बंध उदय और सत्व कर्मों की सत्ता का वर्णन, इस सारे विस्तार को कितना जाने तो हमें बंधन का अभाव होकर मुक्त हो जाएगा। तो कहते हैं कि बंधन को जानने से लोक में आज तक कोई बंधन से मुक्त नहीं हुआ है। किसी से रस्सियों से जकड़ के बांध दिया हो तो मैं रस्सी से जकड़ के बंधा हूं, और ये रस्सी बहुत मजबूत है और ये इस तरह से बनाई है, वो फला आदमी ने मेरे को बंधन में डाला है, ये सब विचार करते रहने से वो बंधन से मुक्त होगा? तो कहते बंधन का विचार करते रहने से जिस प्रकार जीव बंधन से मुक्त नहीं होता है लोक में, उसी प्रकार बंध की प्रक्रिया के विस्तार में जाने से और उसका विचार करते रहने से वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। ये तीन गाथाएं जय हैं और तीन गाथाएं और, ये छह गाथाएं हैं, और उन छह गाथाओं में यही विस्तार से बताया है। दो पॉइंट हैं कि एक तो बंधन के ज्ञान से बंधन से मुक्ति नहीं होती है, और दूसरा पॉइंट है बंधन के चिंतन से बंधन की मुक्ति नहीं होती है। यद्यपि दोनों लगभग एक से ही हैं, ऐसा लगता है कि क्या कहना चाहते हैं आचार्य, कह तो दिया ये बात कि बंधन के ज्ञान से बंधन की मुक्ति नहीं होगी, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक तो हम किसी चीज को जानने के लिए उसकी स्टडी करते हैं, और जानने की स्टडी करके जब हम किसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि ये बात हमारी समझ में आ गई तो खत्म हो जाती है बात, बस फिर दूसरे काम में लग जाते हैं। तो वो तो हुआ जानना, और फिर उसका चिंतन माने लगातार उसी के बारे में विचार करते रहना, सोचते रहना, मनन करते रहना, चिंतन करते रहना। देखो भगवान की भक्ति करते रहने से मुक्ति नहीं होगी, दयादान से मुक्ति नहीं होगी, क्रियाकांड से मुक्ति नहीं होगी, ये तो पीछे बहुत विस्तार से कहा है। क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कांड से सहज ही सुलभ आत्मा राम, ये अपन पढ़ के आए हैं। तो उन सब बातों का तो निषेध करके आए हैं पीछे, और ये समझ लो कि ये आत्मा समझ में आ गया है कि क्रिया कांड से नहीं मिलेगा, तीर्थ यात्रा से नहीं मिलेगा, जप जाप से नहीं मिलेगा, पूजा पाठ से नहीं मिलेगा, दयादान से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ज्ञान का मार्ग है। अभी तक ऐसा कहते आए क्या, एक ज्ञान का रास्ता है, भावुकता का रास्ता नहीं है, धोने धोने का रास्ता नहीं है, है ना, दया की भीख मांगने से रास्ता नहीं है। हम भगवान के सामने भक्ति करते हैं और भक्ति करते करते हमें आंख में आंसू आ जाएं और हम बहुत गदगद हो जाएं तो दुनिया भी देख के हमको समझती है कि हम बहुत धर्मात्मा हैं, और दुनिया तो जो समझे सो समझे, लेकिन हमको भी अंदर से ऐसा लगने लगता है कि हमारे हम में बहुत फर्क आ गया, वो बात पहली जैसी नहीं रही है, अब तो मैं एकदम धर्मात्मा हो गया, ऐसा लगता है कि नहीं लगता। तो कुछ नहीं है, वो मरघट या वैराग्य है, भावुकता है, उसमें जीरो मात्र भी धर्म नहीं आया है। बस इतना हम कह सकते हैं कि ऐसी थोड़ी पात्रता का परिपाक हुआ है कि ऐसे में कोई सत्य बात सुनने समझने को मिल जाए तो कल्याण हो सकता है, हो सकने की संभावना है, नियम रूप कारण नहीं है, थोड़ी पात्रता का परिपाक है, बस इतनी बात है, इससे ज्यादा उससे कुछ होने वाला नहीं है। और ये रास्ता तो ज्ञान का रास्ता है, ये समझ लो कि हम बंधाधिकार तक इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ठीक है बंध से विमुक्त होना है ना, तो बंध का अभ्यास करो, प्रथमान योग नहीं पढ़ते हैं, चरणान योग भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो क्रियाकांड में चला गया, क्या प्रथमान योग उनकी दृष्टि में कहानी किस्सों में चले गए, फिर वो करुणान योग में जो सारा बंध का बहुत विस्तार से वर्णन है, मुझे कभी कभी विचार आता है अन्ना जी कि ऐसी बात कुंदकुंदाचार्य ने क्यों लिखी, ऐसे लोग क्या उनके सामने रहे होंगे कि जो कर्म बंधन का ज्ञान करके अपने को मानते होंगे मुक्ति मार्गी, कर्म बंधन का चिंतन भी करके अपने को मुक्ति मार्गी मानते होंगे। तो लगता है कि गारंटी से रहे होंगे। इन पंक्तियों से भी ये बात पता चलती है और हमारा इतिहास भी हमको यही बताता है, क्योंकि सबसे पहले जिनवाणी जो निबद्ध हुई, पहले तो मौखिक चलती थी ना दिगंबर संप्रदाय के अनुसार, तो सबसे पहले जो निबद्ध हुई तो षटखंडागम बने। कौन कौन क्या बने? वो प्रथम श्रुत स्कंद वही कहलाता है और उसमें सारा वर्णन इसी बात का ज्यादातर है। भूतबलि और प्रसुदंताचार्य ने लिखे, दर्शनाचार्य के वो शिष्य थे, तो उस वक्त जब वो लिखे गए और तो उसी का पठन पाठन और ज्यादा होगा। वो कहते भी लेकिन यही बचा है हमारे स्मृति के आधार पर, जो बचा है दुनिया में वो यही चीज बची है। तो जैसे आज से 50 साल पहले करुणानी योग के अभ्यासी को ही बड़ा पंडित माना जाता था, और जहां लोग त्यागी ब्रह्मचारी लोग होते थे, पंडित लोग होते थे, वो उसका ही अध्ययन ज्यादा करते थे। तो ऐसा लगता है कुंदकुंद के पहले भी बिल्कुल ऐसा ही वातावरण देश में बन गया होगा, जैसे कांजी स्वामी के पहले बना था वातावरण करुणानी योग के स्वाध्याय का था। धर्म के नाम पर यदि वही कर्म की चर्चा होती रहती थी, कहते तो थे उसे धर्म चर्चा, और होती थी क्या, कौन से गुणस्थान में कौन सा कर्म की कितनी प्रकृतियां कब बनती हैं, कैसे बनती हैं, कब उदय में आती हैं, कब उदय में नहीं आती हैं, सत्ता में कब रहती हैं, उत्कर्षण किनका होता है, अपकर्षण किनका होता है, इस सारे डिटेल की ही चर्चा, इसी का नाम तत्व चर्चा था। जब हम लोग तुम्हारी उम्र में थे, बचपन में थे ना, तब तो इसका बहुत जोर था, और हम वहां पढ़ते थे तो भगत जी आए थे, भगत जी थे हमारी विद्यालय के अधिष्ठाता, तो उन्होंने हमारी गोमट सार की ही परीक्षा ली थी और 10-10 रुपए हमें इनाम दिए थे, हमें बड़े दादा को 10-10 रुपए, आज के तुम्हारे 1000-1000 रुपए के बराबर थे उस जमाने के 10-10 रुपए, है ना, उस जमाने की बात कर रहे हैं, 1 रुपया किलो घी था, अभी कितने रुपए किलो है मुझे पता नहीं है, क्योंकि घी बंद कर दिया डॉक्टरों ने, तो क्या पता रहेगा, 125-150 है ऐसा कुछ होगा, मतलब 150 गुना भाव बढ़ गए हैं। तो 10 रुपए में 150 का वो लगाओ कितनी कितना होगा ऐसा समझ लो। और हमारे गुरुजी कहते थे कि नोकदार टोपियां काम नहीं आएंगी जब तक तुमको इसका अभ्यास नहीं होगा, गोमट सार का, करुणानी योग का बहुत गहरा, तब तक समाज तुम्हें पंडित मानने वाली, ऐसा वातावरण था। तो कुंदकुंदाचार्य के पहले भी ऐसे लोग बहुत होंगे कि जो निरंतर कर्म प्रकृतियों का अध्ययन कर करके, और हमारा समय पूरा धर्म में ही जा रहा है, सुबह से शाम तक धर्म में जा रहा है। बोलो, ऐसे नहीं थे कि जो सुबह से शाम तक बैठे 2 घंटा चर्चा करी तो आज का दिन बहुत बढ़िया गया, धर्म में ही गया पूरा, कर्म में गया ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने ये बात लिखी कि कर्म का ज्ञान हो जाने से, बंध का ज्ञान हो जाने से तुम्हारे को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, और बंधन का चिंतन करने से, माने उसी में निरंतर उपयोग लगाए रहो, उसका नाम चिंतन है, ऐसा दो भेद डाले। और गजब की बात तो है कि जयसेनाचार्य ने और अमृतचंदाचार्य ने जो इसकी टीका लिखी वो तो ठीक है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन दोनों की टीका की अंतिम पंक्ति वो ध्यान देने लायक है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसका मैं लोभ संवरण नहीं कर सकता। देखो क्या लिखा, एतेन कर्म बंध प्रपंच रचना परिज्ञान मात्र संतुष्टा उत्थाप्यन्ते। जो थोड़ी संस्कृत जानते हैं वो अंदाजा लगा होगा क्या कहना चाहते हैं, बहुत कठोर भाषा है, जैसे कि और जगह कहते हैं ना, इससे मीमांसक मत का खंडन किया, इससे सांख्य मत का निरसन किया, ऐसी भाषा उन लोगों के लिए लिखते हैं जो विधर्मियों के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है न्याय शास्त्र में। विभूति चंद जी साहब, उस भाषा का उपयोग यहां किया है उन्होंने, किनके लिए? कि वो करुणान योग का जो अभ्यास करते हैं उनके लिए। क्या लिखा उस शब्द देखो, ये तेने माने इससे कर्म बंध की प्रपंच, वो प्रपंच माने तो वैसे विस्तार होता है, और आज तो प्रपंच शब्द काफी बदनाम है कि वो आदमी बड़ा प्रपंची है। देखो भैया, तुम हमारे सामने प्रपंच मत करो, बहुत प्रपंच हो गया, अब बस करो। तो उसको वो प्रपंच कह रहे हैं यहां आचार्य, जो कर्मबंध की ही चर्चा में पड़े हैं उनको क्या कह रहे हैं कि वे प्रपंच में पड़े हैं। उस समय जो प्रपंच का अर्थ होता था उतना बुरा नहीं होता था जितना आज होता है। उस वक्त तो होता था प्रपंच में पड़े हैं माने विस्तार में उलझ गए हैं, और आज तो उसका अर्थ उसमें कुछ और विकृतियां शामिल हो गई हैं। ख्याल है ना, प्रपंच में षड्यंत्र के अर्थ में कहा जाने लग गया है। तो क्या कहते हैं, देखो बंध कर्म बंध प्रपंच रचना के परिज्ञान से, मैंने कर्म बंध के विस्तार के परिज्ञान से संतुष्ट हो गए हैं, ऐसे लोगों की उत्थापनते उनको उखाड़ के फेंक दिया हमने, ऐसा कहते हैं। उत्थापनते क्या ऐसा होता है, उनको निराशन किया, उनका खंडन किया। वे धर्मात्मा हैं जो इस धोखे में वे आ गए हैं, वही धर्म इसमें रंच मात्र नहीं है, शुभ भाव होगा तो पुण्य का बंध अवश्य होगा, और कदाचित मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा ऐसा हो गया हो तो वो भी नहीं होगा। आज भी जो करुणानियोग के विशेषज्ञ हैं उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती है, गिने ही चुने दो चार लोग हैं, लेकिन वे जमीन की तरफ नहीं देखते हैं, वो सब बाकी के विद्वानों को भी महातुच्छ समझते हैं क्या, और अपने को सीधे साक्षात केवल ज्ञान हो गया हो जैसे, और मोक्ष के जाने वाले यही हो ऐसा मानते हैं बहुत गहराई से। लेकिन उन्होंने ये कुंदकुंदने को ये शब्द लिखने पड़े, काम मैं हिंदी पढ़ दू इसी का, तो वैसे तो मैंने हिंदी आपको कराई दी है, बताई दी है। इस कथन से उनका उत्थापन खंडन किया गया, जो कर्मबंध के प्रपंच का विस्तार की रचना के ज्ञान मात्र से संतुष्ट हो रहे हैं। भावार्थ में जतन जी जैसा कि कोई अन्नमति यह मानते हैं कि बंध के स्वरूप को जान लेने से ही मोक्ष हो जाता है, उनकी इस मान्यता का इस कथन से निराकरण कर दिया गया। जानने मात्र से ही बंध नहीं कट जाता, किंतु वह काटने से ही कटता है, और काटने से ही कटता है का अर्थ अभी विस्तार से अपन को करना बाकी है। देखो आगे वे स्वयं ही कहेंगे कि भाई क्या है, क्या है उपाय, वो बताएंगे। जयसेनाचार्य ने और भी कठोर शब्दों में लिखा है, और उन्होंने कर्मबंध की प्रपंच की रचना को और विस्तार से खोला है कि क्या क्या सोचे जाने उसके गहराई में उतरे। वो जानने लायक नहीं है ये बात नहीं है, करुणानी योग की स्थापना की बात समझनी हो तो पंडित टोडरमल जी साहब ने जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रस्तावना लिखी है उनने बहुत विस्तार से उसकी स्थापना की है, और वहां लिखा है अर्थ के पक्षपाती और करुणानियोग और अध्यात्म के पक्षपाती और चरणानियोग के पक्षपाती और प्रथमानियोग के पक्षपाती इसका निषेध करते हैं, वो सही नहीं है, और इसके अध्ययन से क्या लाभ हैं वो सब उन्होंने बताए। लेकिन वो सब बताने के बाद और उसकी उपयोगिता हमारे दिमाग में बैठ जाने के बाद उसके अंतिम बात ये कि कर्म बंध के प्रपंच की रचना के ज्ञान मात्र से संतुष्ट लोग अपने को धर्मात्मा समझ लें और वो समझें कि इससे मेरे कर्म बंध का नाश हो जाएगा तो वे धोखे में हैं। और उसका ही चिंतमन करने से, जैसे ना आचार्य ने इतना कठोर शब्द लिखा है, क्या लिखा मालूम, कि ये तो स्वभाव रूप धर्म ध्यान है, क्या अपाय विचय विपाक विचय, विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। कर्मों का विपाक कैसे क्या होता है समझे ना, वो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। और कहते हैं कि ये व्यवहार धर्म ध्यान है, ऐसा लिखा, और इससे तो बंद होता है, और निश्चय धर्म ध्यान तो अपने आत्मा के अनुभव रूप होता है, ऐसा खोल के लिखा है विस्तार से। तो फिर ये प्रश्न किया इसी मोक्ष अधिकार में कि फिर हम बंधन से मुक्त कैसे होंगे, तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि दुधाकरण ही एकमात्र उपाय है। इसके पहले मैं एक बात और बता दूं कि इसमें एक शब्द ऐसा भी है, देखो कि जह बंधे छेद तूणे बंधन बद्धो न पावधि विमोक्षम, तह बंधे छेद तूण है जीवो संपावधि विमोक्षम। इस गाथा के आधार पर लोग कहते हैं, इस गाथा का अर्थ क्या है कि जिस प्रकार वो बंधन बद्ध पुरुष था ना, तो वो बंधन का ज्ञान होने से बंधन से मुक्त नहीं होता, बंधन के चिंतन करने से मुक्त नहीं होता, लेकिन बंधनों को काट दे तो बंधन से मुक्त होगा। ऐसे ही जो कर्म बंधन से बंधे हैं वे कर्म बंधन के ज्ञान से कर्म बंधन से मुक्त नहीं होंगे, कर्म बंधन के चिंतन से मुक्त नहीं होंगे, वे बंध को काटेंगे तो मुक्त होंगे। ये इस गाथा का अर्थ है। देखो तह बंधे छेद तूणे, बंध को छेद कर दें तो, और जैसे ना चाहने तो भेद तूणे छेद तूणे मोह तूणे, तीन अर्थ किए, छेद दें भेद दें काट दें, ऐसा तीन गाथाएं मानी है इनको, ऐसा बदल बदल करके गाथाओं की गिनती में तीन गाथाएं मान ली इस गाथा को। तो इससे लोग वो क्या अर्थ करते हैं कि देखो बंधन को काटना पड़ेगा, और बंधन को काटना बंधन करते हैं तब से, और तब माने उब्बास, उब्बास माने फिर वो सारा क्रियाकांड लौट फिर के वहीं का वहीं आ जाता है। तो करुणानुयोग से उतर के चरणानुयोग पे चले जाते हैं, लेकिन ऐसा यहां नहीं है। वे तो छेदतून की व्याख्या क्या करते हैं कि देखो क्या करते हैं वो, और ऐसे लोगों को उन्होंने एक और पढ़ा, एतेने कर्म बंध विषय चिंता प्रबंधात्मक विशुद्ध धर्म ध्यानांध बुद्धयो बोध्यन्ते। ये भी बहुत मार्मिक पंक्ति है, ये पेज नंबर 2460 पर 291वीं गाथा के टीका की नीचे की पंक्ति है। मालूम है क्या, इससे कर्म बंध की विषय की चिंता के प्रबंधात्मक विशुद्ध धर्म ध्यान से अंधी है बुद्धि जिनकी, उन्हें हम समझा रहे हैं। अंध बुद्धि लिखा उनको, कौन उसको, एक तो धर्म ध्यान लिखा किसको, कर्म बंध की चिंता को विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान लिखा, और फिर कहते हैं कि उससे अंधी हो गई है बुद्धि जिनकी, और उनको हमने समझाया है ये गाथा लिख, माने उनके समय में भी ऐसे लोग रहे होंगे ना जिनको लक्ष्य करके उन्होंने ये शब्द लिखे हैं। और फिर देखिए 292 गाथा की टीका में बढ़ाता हूं मैं, जो अभी अपन ने गाथा पढ़ी थी, एतेने उभयोपि पूर्व आत्मबंधयो दुधा करने व्यापरयते, कि इससे उन्होंने कहा था ना बंध का छेदन करने से बंध कटेगा, तो इसका अर्थ हमें ये नहीं है कि तुम फिर क्रियाकांड में लग जाओ, तो क्या कराना चाहते हैं, तो कहते हैं इससे दोनों के बीच, दोनों माने आत्मा और बंध, इनके बीच में भेद विज्ञान दुधाकरण, इनको करके दो टुकड़े कर दो, इसकी तरफ व्यापारियते, तुम्हारे व्यापार को इस तरफ लगाना चाहते हैं हम। ये तीन पंक्तियां आत्मख्याति की, ये जो गाथाएं जो मैंने सात आठ गाथाओं का सार आपको बताया, इनकी दो दो लाइन की टीका लिखी अमृतचंद ने, क्योंकि बहुत सरल गाथाएं हैं, टीका लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी अंतिम जो तीन पंक्तियां हैं कौन कौन सी, कि हमने जो उसमें संतुष्ट हैं उनकी उत्थापना की, जो उसमें संतुष्ट धर्म ध्यान मान के अंध बुद्धि वाले हैं उनको हम समझा रहे हैं, और ऐसा कहके हम उन्हें बंध और आत्मा के बीच भेद विज्ञान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये निष्कर्ष है, मतलब भेद विज्ञान की जो प्रक्रिया है उसमें तुम चढ़ो, मुक्ति का कारण वो है। देखो ये लिखा है, कर्म से बंधे हुए पुरुष को बंध का छेद मोक्ष का कारण है, क्योंकि जैसे बेड़ी आदि से बद्ध पुरुष को छेद से बंध छूटने का कारण है, उसी प्रकार कर्म से बंधे हुए को कर्म बंध का छेद कर्म बंध से छूटने का कारण है। इस कथन से पूर्व कथित दोनों को, माने जो बंध के स्वरूप के ज्ञान मात्र से संतुष्ट हैं वे, और बंध के विचार में उलझे हुए हैं वे, इन दोनों को आत्मा और बंध के दुधाकरण के व्यापार में लगाया जाता है। अर्थात आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करने के प्रति लगाया जाता है, उद्यम कराया जाता है, क्योंकि बंध का मोक्ष का कारण एकमात्र दुधाकरण ही है। ये निष्कर्ष है समय सार के मोक्षाधिकार की शुरू की आठ दस गाथाओं का। तो एक ही व्याख्यान अपन को मोक्ष अधिकार पर करना है, इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मर्म की बात है, और ये मर्म की बातें इतनी महत्वपूर्ण है कि मेरे भजन से आप स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैंने खुद आचार्य की टीका पढ़ी और उनकी मूल गाथाएं पढ़ी, क्योंकि इनसे दो भ्रम पैदा होते हैं कि बंध के विचार से काम नहीं होगा, बंध काटने पड़ेंगे। बंध काटने का अर्थ फिर लोग अलग अलग करते हैं, तो बंध काटने की प्रक्रिया क्या है, वो कहते हैं दुधाकरण। बंध और आत्मा को दुधाकरण, इन दोनों को भिन्न भिन्न जानना, यही एकमात्र उपाय है। कर्ता कर्म अधिकार के आरंभ में ही कहा था कि जब तक तब तक अज्ञानी रहेगा, कहा था ना। और यहां कह रहे कि जब तक यह आत्मा आत्मा और बंध के बीच भेद विज्ञान करके इन दोनों को पृथक पृथक नहीं करेगा, करेगा माने क्या, जानेगा, जानना ही करना है, क्योंकि दो द्रव्य तो पृथक तो हैं ही, क्योंकि उनके बीच में वज्र की दीवार पड़ी है। दुधाकरण ही एकमात्र उपाय है, ऐसा लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि दुधाकरण ही एकमात्र उपाय है। 293 में जो गाथा है, बंधानम च सहावम बयान दुम अप्रणो सहावं च बंदेशु जो विरज्जति सुखम विमोक्षणम कुणदी। इस गाथा में क्या कहा है कि देखो भाई, कि इन दोनों के बीच में भेद की रेखा खींच दो, अलग अलग कर दो, कि बस इतना ही करना है, इतने से हमारा काम हो जाएगा। अजित भाई कि नहीं होगा, तो क्या करना है कि बंधानम माने बंध को, और स्वभावम माने अपने आत्मा के स्वभाव को, बंध के स्वभाव को और अपने आत्मा के स्वभाव को बिल्कुल अलग अलग जान कर, जानना इतना ही नहीं लिखा, जान कर, जान कर माने अभी बात खत्म नहीं हुई। तो क्या बंदेज जो विरज्जति, जो बंध से विरक्त होते हैं और आत्मा में अनुरक्त होते हैं, सो कम विमोक्षणम कुणदी, वह कर्मों से मुक्त होते हैं। क्या अर्थ है? जीवाजीव आदिकार में कहा था जीव और अजीव को भिन्न जानना, वो धर्म है, समझे ना। फिर पुण्य पाप आदिकार में कहा पुण्य और पाप से भिन्न आत्मा को जानना, वो धर्म है। फिर आश्रव आदिकार में कहा आश्रव और आत्मा को भिन्न जानना, वो धर्म है। और बंधाधिकार में कह रहे हैं कि बंध और आत्मा को भिन्न जानना, वो धर्म है। मतलब सब जगह भिन्न जानने की बात ही मुख्यता है। और हरेक में इतना और जोड़ दो, कितना, कि जीव और अजीव से भिन्न आत्मा को जानकर बाकी जीव अजीव से विरक्त होना और आत्मा में अनुरक्त होना, ये धर्म है। क्यों? पुण्य पाप को से भिन्न आत्मा को जानकर पुण्य पाप से उपयोग को हटाना और आत्मा में लगाना, ये धर्म है। आश्रव और आत्मा को भिन्न भिन्न जानकर आश्रव से उपयोग हटाना, ये धर्म है। क्यों मोहनलाल जी? तो क्या हुआ निष्कर्ष? भले ही अकेला बंध कह रहे, तुम ये लगा लो कि जीवादि सात तत्वों से, जीवादि छह द्रव्यों से, इन सब से भिन्न अपने भगवान आत्मा को जानकर यही मैं हूं ऐसा मानना और उसमें ही चिंतन करना, उसमें ही विचार करना, उसमें ही उपयोग को लगाना, ये धर्म है। और इससे मुक्ति की प्राप्ति होगी। एक पॉइंट खत्म हुआ। अब फिर नया प्रश्न खड़ा किया आचार्य ने कि आपने ये बात बताई, ये हमारी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गई और हम अब बराबर यही करेंगे, लेकिन इतनी सी और बता दो कि एक करें कैसे, साधन क्या है, क्या उपाय क्या है, करें क्या। क्योंकि हम जो जो इनको करने का साधन मानते हैं उनका आप निषेध करते हो। हम कहते हैं देह से भिन्न भगवान आत्मा है, तो देह से भिन्न आत्मा को करना है तो उपवास कर कर आगे देह को सुखा दो, क्यों, तो आत्मा देह से भिन्न हो जाएगा, हमारा मुक्त हो जाएगा। तो तुम कहते हो कि रास्ता सही नहीं है, क्यों। हम कहते जिन कर्मों से बंधे हैं उनका विचार करें, उन्हें काटने को, तुम कहते ये रास्ता सही नहीं है। तो उपाय क्या है? व्रत उपवास नहीं है, तीर्थ यात्रा नहीं है, दान नहीं है, क्यों। तो क्या उपाय है? तो उपाय के रूप में वो कहते हैं कि दुनिया में भिन्न साधन साध्य की व्यवस्था सही नहीं है। अभिन्न साधन साध्य होता है, माने वो साधन जो है वो भी हमारे भीतर होना चाहिए। ये बहुत मरम की बात है सोहनलाल जी। जो उपाय है वो स्वाधीन होना चाहिए। जैसे आप चाइना से लड़ाई लड़नी है, जीतना है, तो उपाय बताओ। क्या अमेरिका के हाथ पैर जोड़ के सहायता मांग लो, रसिया को बुला लो, तो ये उपाय नहीं हुआ। ये उपाय तो और अधिक पराधीन होने का हुआ, क्योंकि जिससे सहायता मांगी अब उसके अधीन तो पहले ही हो गए मुफ्त में, क्यों हो गया क्या नहीं। तो वो जो साधन है आजाद होने का, स्वतंत्रता कायम रखने का, मुक्त होने का दुखों से, वो साधन अभिन्न होना चाहिए, वो आत्मा के भीतर की संपत्ति ही होना चाहिए। और वो है, वो क्या है साधन? तो मोक्षाधिकार में कहा कि प्रज्ञा छेनी ही वो साधन है ना। 294 भी गाथा में लिखा है, जीवो बंधो यतहा छिज्जति सलक्षण एहि नियेण एहिम पन्ना छेदन एण दु छिन्ना नानत्वमापन्ना। के जीव और बंध को दोनों के लक्षणों से उन्हें पहचान कर फिर प्रज्ञा रूपी छेनी को दोनों के बीच में डालकर और उन्हें अलग अलग कर देना चाहिए। साधन क्या है? प्रज्ञा रूपी छेनी माने बुद्धि, माने तेरे ज्ञान गुण की वो पर्याय जो आत्मा के सन्मुख है। एक बात ध्यान से सुन लो कि बार बार वर्णादि अरु राग आदि तेन निज भाव को न्यारा किया, ऐसा बोलते हैं ना, तो इस प्रज्ञा छेनी को सच नहीं करते हैं। प्रज्ञा छेनी से निज को न्यारा किया ऐसा नहीं कहते हैं बार बार, एक आध दफे तो कह देते हैं कि दृष्टि के विषय में वो शामिल नहीं है, लेकिन पूरी लाइन क्या है यही है ना, वर्णाद्या वा राग मोहा दयो वा सर्वे भावा भिन्न ए वास्य पुंसा, इस भगवान आत्मा से वर्णादि और रागादि सभी भाव भिन्न ही है, यही लाइन है कि नहीं, क्योंकि प्रज्ञा छेनी को तो उसे पटकना है डालना है, और वो कहते हैं वो अभिन्न साध्य साधन है, यदि उसे आत्मा का अंदर या नहीं माने तो वो भिन्न साधन हो जाएगी ना, इसलिए उसमें दो अपेक्षाएं हैं, जिसमें अपनापन स्थापित करना है उसमें तो उसे शामिल नहीं करते हैं, लेकिन जिसे उसका उपयोग करना है तो वो अपनी ही चीज है ऐसा कहते हैं उसे, समझ में आया कि नहीं है? ये कोई स्थूल बात नहीं है, ये मुमुक्षुओं के लिए भी बहुत सूक्ष्म बात है, क्योंकि हम फटाफट राग जैसा ही ज्ञान को भी पर में डाल करके और उसकी धुनाई शुरू कर देते हैं। राग से तो भगवान आत्मा को भिन्न करना है, राग जुदा और आत्मा जुदा, लेकिन वो राग कर्म नहीं है, राग वो हथियार नहीं है जिससे करना है, प्रज्ञा छेनी वो हथियार है जिसके द्वारा राग और आत्मा को भिन्न करना है, फिर बाद में जब काम खत्म हो जाएगा तो कहेंगे प्रज्ञा छेनी को भी अलग रख दो, क्यों ये पन्ना ये छेद एण प्रज्ञा छेनी से ये काम होगा, और इसी के बाद का वो प्रसिद्ध कलश है जो प्रज्ञा क्षेत्री सितेयम कथमपि निपुणई पातिता सावधानई सूक्ष्मे अंता संधि बंधे निपतति रविसात तात्म कर्मो भयस्य आत्मानम अग्निमंता स्थिर बिलसत संदामनि चैतन्य पूरे बन्नम चाज्ञान भावे नियमता मविता कुर्बती भिन्न भिन्नौ प्रज्ञा क्षेत्री सितेयम, ए प्रज्ञा रूपी छेनी बुद्धि रूपी छेनी कैसी है, सितेयम अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली, पातिता डाली किन्ने सावधानी अत्यंत सावधानी पूर्वक, किन्ने निपुणई जो अत्यंत निपुण लोग हैं उन्होंने अपनी प्रज्ञा रूपी छेनी को बहुत सावधानी से डाला, कहां डाला कि सूक्ष्म में अंता संधि बद्धे बंधे, ये जो पत्थर होते ना पत्थर वो छेनी से काटे जाते हैं तो वो कारीगर जरा सा ऐसा लगा करके इतनी सी ठोकर मारता है और दो पट्टी लंबी छह फुट लंबी अलग अलग हो जाती है, क्यों, लेकिन वो उससे उस जगह पे जहां उसने छेनी लगाई है वहां नहीं लगा के जरा भी यहां वहां लगा दे तो कितनी चोट मारे वो टूटेगी नहीं, और टूटेगी तो सही जगह से नहीं टूटेगी, क्या मतलब है, वो अंदर से वो टूटी हुई है और उसे मालूम पड़ता है कि यहां से इसमें दरांच है और इसमें मैं वो डालूंगा तो ये अलग हो जाएगी, ऐसे आत्मा और कर्म के बीच में सूक्ष्म अंतः संधि है, क्योंकि दो द्रव्य हैं एक तो है ही नहीं, तो वहां प्रज्ञा रूपी छेनी डाले तो दोनों अलग हो जाएंगे, किसका काम है, अत्यंत निपुण लोगों का काम, कैसे डाले तो अत्यंत सावधानी पूर्वक डाले, इस कलश में लिखा है, इस कलश का हिंदी पद्यानुवाद सुनाऊं, अन्ना जी का ऐसा हो रहा है कि वो सुनाओ हिंदी पद्यानुवाद, समझ में नहीं आता लोगों को, ये जो है ना आपके पास किताब सबके पास, इसमें से निकालो पेज नंबर 77 हां 76 पेज की बात है बताओ। सूक्ष्म अंता संधि में अति तीक्ष्ण सरल सूक्ष्म अंतः संधि में बंध और आत्मा के बीच में जो एक दराद पड़ी है जो बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देती है उसको बहुत निगाह डालकर बारीकी से देखकर अति तीक्ष्ण बहुत पैनी छेनी होना चाहिए। छड़ला में लगा ना तिन्ने सुविद्य छेनी परम पैनी डार अंतर भेदिया और वरुणादि अरुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। देखो वरुणादि रागादि है ना वो छेनी प्रज्ञा छेनी तो वहां डाल रहे हैं उसको राग की पार्टी में खड़ा कर दोगे तो उससे भिन्न करना पड़ेगी तो छेनी कहां से लाओगे फिर। ये बात है इसी का अनुवाद है वो छड़ाला में सूक्ष्म अंता संधि में अति तीक्ष्ण प्रज्ञा छेनी को अति निपुणता से डालकर तिन्ने अति निपुण जन ने क्या किया कि बंध को अति भिन्न करके आत्मा से बंध को जुदा कर दिया। देखो तो भाषा पर विचार करना बंध से आत्मा को जुदा कर दिया क्या लिखा ना ऐसे यही है ना डालकर बंध को आत्मा से बंध से आत्मा को नहीं बंध को आत्मा से पृथक कर दिया क्योंकि दूर तो उसे फेंकना है ना आत्मा को तो रखना है ना। यदि आत्मा को कर दिया होता तो आत्मा की छुट्टी और बंध को रख लेते ऐसा हो जाता क्या नहीं चावलों में से मार अपन ने निकाल के फेंक दिया क्यों क्या फेंका माल के मार के चावल माल फेंक दिया गजब हो गया माल फेंक दिया क्या फेंक दिया माड़ है डले और अभेदा साहित्य का नियम है डा और ला में अभेद होता है तुम्हारे अंताक्षरी में अंत में डा आ जाए ना तो ला से शुरू कर सकते हो क्योंकि व्याकरण का नियम है डले और अभेदा डा और ला में भेद नहीं है वास्तव में वो माल है जिसमें जो माड़ हो गया। चाय में क्या करते हो तुम कि चाय को उबाल कर फिर छन्नी से छानते हो तो वो छना हुआ पानी फेंकते हो कि वो चाय की पत्ती बची रही वो फेंकते हो क्योंकि उसका माल क्या है वो माल तो पानी में आ गया ना और उसे फोक समझ के फेंक देते हो और चावल में उल्टा करते हो तो वो माल तो फेंक देते हो और जो फोक बचा घास बचा उसे खाते हो तो माल है ना तो किसको फेंकना और किसको रखना बंध और आत्मा को दुधाकरण तो करना है अलग अलग तो करना है लेकिन आत्मा को रखना है और बंध को फेंकना है। इसलिए लिखा ना इस छंद में आप देखो क्या है पढ़ रहे थे ना अपन कहां गया अति सूक्ष्म संधा अंतः संधि में अति तीक्ष्ण प्रज्ञा छेनी को अति निपुणता से डाल कर अति निपुण जन ने बंध को अति भिन्न करके आत्मा से आत्मा में जम गए। ये बहुत मरम की बात है ये गाथा में है कलश में है कि आत्मा में जम जाना और बंध की तरफ देखने ही नहीं अलग कर दिया तो बेही विवेकी धन है बेभव जलधि से तर गए संसार समुद्र से पार बोई होंगे। ये मुक्ति का मार्ग है मोक्षाधिकार में समय सार का निष्कर्ष आ गया है पर एकमात्र करने योग्य कार्य ये है एकमात्र धर्म ये है बस करो मैं बाकी सारा क्रियाकांड इसके साथ हो तो व्यवहार से उसे भी धर्म कह देते हैं। जमाई के साथ नाई आए तो उसे भी हम मेहमान कह देते हैं। कह देते कि नहीं कह देते? पहले के जमाने में शादी हो जाती थी और पहली दफे मैंने शादी के बाद तो गई लड़की ससुराल लौट के आ गई ना, फिर द्वारा लेने आते थे। पहली दफे मैंने दुरागमन, दूसरी दफे विदा कराने के लिए, तो अकेला लड़का नहीं आता था, उसके दो पांच दोस्त आदमी नाई धोबी ऐसा पुराने जमाने में बहुत सब साथ में आते थे धाम धाम के साथ। क्यों? तो हमारे यहां मेहमान आए हैं। कि कितने मेहमान हैं? कि आठ आदमी हैं। उन आठ में नाई और धोबी भी शामिल है कि नहीं है? उनको भी मेहमान कहा गया कि नहीं कहा गया? कौन है कि हमारे रिश्तेदार हैं? कहा गया कि नहीं कहा गया? फिर हमने कहा कि भैया हमने तुम्हारे रिश्तेदार को वहां देखा था। कि कहां? कि एक नाई की दुकान पर हमने उससे बाल बनवाए थे। कि शर्म नहीं आती? हम नाई हमारे रिश्तेदार होते। कि तुम्हें कहा था कि ये हमारे रिश्तेदार मेहमान है। वो जमाई के साथ आए तो मेहमान कहलाते हैं। उन्हें भी वैसा ही हलवा पूरी मिलता है जैसा जमाई को मिलता है। कभी कभी तो जमाई कहता है कि देखो मेरे इन दोस्तों का ध्यान रखना, मेरा रखो चाहे ना रखो। क्यों? इन दोस्तों के बीच में मेरी किरकिरी नहीं होना चाहिए कि तेरी ससुराल में गए थे और ये मजा नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। होता क्या? नहीं होता। लेकिन वो जमाई के साथ आए तो, और अकेले आए तो उन्हें कोई पानी को नहीं पूछे, घर में घुसने नहीं दे। बोलो ऐसे ये बाकी सब क्रियाकांड इस भेद विज्ञान के साथ हो, ये प्रज्ञा रूपी छेनी के साथ हो, जो बंदर आत्मा को भिन्न करके आत्मा में जम गए ऐसे वाले हों, तो उसका सारा क्रियाकांड धर्म है। व्यवहार से धर्म कहा जाता है। जनवाणी में उसे धर्म क्यों कहा? इसलिए धर्म किया, उसकी भगवान की भक्ति, उसकी पूजा, उसका दान, उसका तीर्थयात्रा, सब व्यवहार से धर्म है। लेकिन किसके? जिसके अंदर में ये हो तो, और जिसके ये नहीं हो तो उसके वैसे हैं नाई जैसा रिश्तेदार है। तो छड़ाला की इन पंक्तियों पर रींझ गए तो मैं कहता हूं छड़ाला को छड़ाला छोटा समय सार है क्या? इस भांति प्रज्ञा छेनी से इस बारे अच्छा हो गया ना। अब क्या करें? इसके पहले क्या करना पड़ेगा, क्या उपाय है, वो सारी बातें अपन अभी चर्चा इसमें आने वाली है। आज मोक्षाधिकार समाप्त करना है ना। देखो क्या कह रहे हैं कि ये जो बंधकरण है ना, कि जीवो बंधो तहा, ये तो हो गया था ना। इसकी अंतिम, इसकी भी अंतिम पंक्ति पढ़ो, अथवा इसके इसकी पंक्ति पढ़ते अपन हिंदी से पढ़ लेते हैं। आत्मा और बंध को प्रथम तो उनके नियत सुलक्षणों से के विज्ञान से सर्वथा ही छेद अर्थात भिन्न करना चाहिए। तत्पश्चात रागादि जिसका लक्षण है ऐसे समंत बंध को तो छोड़ना चाहिए, और उपयोग जिसका लक्षण है ऐसे शुद्ध आत्मा को ही ग्रहण करना चाहिए। वास्तव में यही आत्मा और बंध के दुधा करने का प्रयोजन है कि बंध के त्याग से शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना। वो बार बार कहते हैं ना दोनों को भिन्न जानना भिन्न जानना भिन्न जानना। तो देखो भेद विज्ञान काय का नाम है? भेद विज्ञान दो पदार्थों के बीच भेद जानने का नाम है, अभेद जानने का नाम नहीं है। क्या? हम और तुम तो एक ही हैं, तुम जैनी और हम जैनी, तुम मनुष्य और हम मनुष्य, तुम दिगंबर और हम दिगंबर, तुम मुमुक्षु और हम मुमुक्षु। कहते इसका नाम जैन धर्म नहीं है। ये तो परद्रव्य से तू अभिन्नता की बात कर रहा है। तो काय का नाम है? कि हम और तुम बिल्कुल जुदे जुदे हैं। तुम्हारा आत्मा जुदा, हमारा आत्मा जुदा, तुम्हारे असंख्य प्रदेश जुदे, हमारे असंख्य प्रदेश जुदे, तुम्हारे अनंत गुण तुम में जुदे, हमारे अनंत गुण हमें दे दे, हमारा ज्ञान हमारे काम आएगा, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे काम आएगा, इसका नाम जैन धर्म है। आज दुनिया के में यही चल रहा है, हम तुम एक, एकता के नाम पे सारे देश में एकता करना, सबसे एकता करना, क्यों? एक भिन्नता की बात है। क्या करते हैं देखो, कि बंध को और आत्मा को भिन्न भिन्न जानो, तो प्रज्ञा रूपी छेनी से जानो, ये बात तो नक्की हुई ना। साधन क्या है हमारे पास? साधन एकमात्र प्रज्ञा रूपी छेनी है। ऐसा नहीं कि हमारे पास स्पीकर है, हमारे पास टेप रिकॉर्डर है, हमारे पास किताबें हैं, बहुत साधन है और बहुत पंडित हैं, चाहे जिससे पूछो। हम तो किताबों के ही तकिया लगाते हैं, किताबों का ही बिछोना है, और आंख खोलो सामने पंडित खड़ा रहता है, जब चाहे चाहे जो पूछ लो। क्यों? बहुत साधन है हमें आत्मा के कल्याण के, सोहनलाल जी है? ये बहुत साधन काम नहीं आएंगे। वो प्रज्ञा रूपी छेनी तुम्हारे पास हो तो वो साधन है, और अकेली वो ही एक साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है। दूसरे में साधन बुद्धि, वो असाधन है। पंडित जी तो हमारे घर में ही है, चाहे पूछ रहे कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि चाहे पूछ लो ना, तुम्हारे घर में ही है वो, चाहे जब कभी नहीं आने वाला है। इस समय साथ हमारे घर में ही रखा, हजारों छपे हैं, चाहे जब पढ़ लेंगे, कभी नहीं पढ़ोगे चाहे जब वाले। एकमात्र तेरी प्रज्ञा ही साधन है, और चाहे जब, कल का ठिकाना है, एक समय का तो ठिकाना नहीं है कि कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तू चाहे जब कर लेंगे। ये तेरा चिंतन क्या बताता है? लापरवाही को ही बताता है, और कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ कि वो प्रज्ञा छेनी से क्या करे, कि प्रज्ञा छेनी से दोनों के लक्षणों से पहचाने। पहले कि आत्मा का लक्षण जानना देखना है, और बंध का लक्षण ये पुद्गलमय है, रागादिमय है। इन दोनों को जानकर फिर क्या करे, दोनों को बिल्कुल अलग अलग जान लिया, क्या वाले करे। अब जान लिया तो जान लेने से काम थोड़ी हुआ, करे तो करे क्या, करे कैसे, कि उनसे उपयोग को हटाकर इस पे उपयोग ले जाए, और ये माने कि ये ही मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, भाई इसका नाम है करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, तोड़फोड़ नहीं करना है। तो फिर वो राग रहेगा जाएगा नहीं, तो कि जल्दी मत करना भेजने की, वो अपने आप समय पे चला जाएगा। एक दफे तू जान तो ले गए मैं नहीं हूं बस, क्यों? एक दफे जान तो ले कि मैं नहीं हूं। जरा विचार करो कि अपनी लड़की को लड़का देखने के लिए अपन गए, बुलाए मेहमानों को, देख दाग के सबने, अब घर में बैठ के विचार कर रहे हैं कि क्या करना क्या करना, कैसा हो उनको मना कैसे करें। अब क्या कहें, अपन ने बुलाया है कि बेवकूफ ये प्रॉब्लम है कि मना कैसे करें कि हां कैसे करें। प्रॉब्लम तो ये है कि डिसीजन करो कि तुम्हें संबंध करना है कि नहीं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि अपन ने मान लो डिसीजन कर लिया कि अपन को संबंध नहीं करना, तो फिर जवाब कैसे देंगे। तो डिसीजन में इस बात का तेरे पे असर होने लग गया कि जवाब कैसे देंगे, तू सही डिसीजन नहीं कर पाएगा, कि जवाब नहीं दे पाएंगे इसलिए भैया अब कर लो, नहीं तो कर जाता तो नहीं, क्यों? तो मूर्ख माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, कि मना करेंगे जवाब कैसे देंगे, हां का जवाब कैसे देंगे, क्यों? ये तो बहुत साधारण बात है, तू पहले नक्की करके क्या करना, नक्की हो जाएगा तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, तेरी अरुचि वहां प्रदर्शित हो जाएगी। तू जवाब नहीं देगा, ये सबसे बड़ा जवाब है, अपने आप भग जाएंगे, थोड़ी देर में भगेंगे। साहब क्या हुआ, क्या हुआ कि सोच रहे सोच रहे सोच रहे, क्या हुआ कि सोच रहे, क्या हुआ कि सोच रहे, कि चलो भैया ने सोचने दो, तो बंद को अलग क्या करना है कर्म को, वे अपने आप समय पे चले जाएंगे। तुम तो निर्णय करो, क्या निर्णय करोगे, मैं आत्मा हूं और यही मैं हूं। इतना तुमने किया तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, ये मोक्ष का मार्ग है। शेष
बताए दिन वाणी, शांति सुधावल साई दिन।